एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक ऐसे जाने माने विचारक और उनकी एक बेहद प्रभावशाली छोटी सी किताब, बल्कि कहूंगी एक लेक्चर पर बात करने वाले हैं, जिसने 20वीं सदी में आज़ादी, जिम्मेदारी और हाँ, हमारे होने के मतलब पर हमारी सोच को वाकई हिला कर रख दिया।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रेंच दार्शनिक जीन पॉल सात्र की और उनके उस मशहूर लेक्चर की जिसे बाद में एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ए ह्यूमनिज्म, यानी अस्तित्ववाद एक मानवतावाद है, के नाम से छापा गया।
और ये कोई मामूली लेक्चर नहीं था, इसने तो एक जबरदस्त बहस छेड़ दी थी, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद वाले माहौल में।
बिल्कुल। और कमाल की बात यह है, देखिए कि ये विषय आज भी उतना ही ताज़ा और ज़रूरी लगता है, शायद पहले से भी ज़्यादा। आज की दुनिया में जहाँ पुराने तौर तरीके, मान्यताएँ सब पर सवाल उठ रहे हैं, सार्थ के विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई, अगर कोई ऊपर वाला नहीं है, कोई बनी बनाई नियम किताब नहीं है, तो हम अपनी ज़िंदगी का मतलब कैसे ढूंढें। ये अपनी जिम्मेदारी और चुनने की आज़ादी पर एक बहुत गहरा चिंतन है ना।
बिल्कुल। तो पहले ज़रा जीन पॉल सार्त्र के बारे में जान लेते हैं। 1905 से 1980 तक ये सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं थे, जैसा आपने कहा, वो एक उपन्यासकार थे, नाटककार थे, पॉलिटिक्स में भी काफ़ी एक्टिव थे और लिटरेचर पर भी लिखते थे, मतलब कई विधाओं में माहिर। 20वीं सदी के फ्रांस में उनका नाम बड़े बुद्धिजीवियों में गिना जाता था और उन्हें अस्तित्ववाद का, कह सकते हैं, सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है।
हाँ, उनकी कुछ किताबें तो बहुत मशहूर है, जैसे बीइंग एंड नथिंगनेस, होना और शून्यता, ये तो काफ़ी गहरी फिलॉसफी वाली है, या फिर नौजिया, मतली जैसा उपन्यास, और उनके नाटक भी, जैसे नो एग्जिट, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं। इनमें बार बार वही बातें आती हैं, आज़ादी, जिम्मेदारी, हम कैसे सोचते समझते हैं।
सही का। और इस विषय पर, यानी अस्तित्ववाद पर बात करने के लिए वो इतने अहम क्यों थे, ये भी समझना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि 1945 तक जब ये लेक्चर दिया गया, पेरिस में अस्तित्ववाद की चर्चा जोरों पर थी और सार्त्र इसके सबसे जाने पहचाने चेहरे थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि लोग इसे ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, काफ़ी गलत फहमियाँ थीं, तो ये लेक्चर सीधे आम लोगों को समझाने की एक कोशिश थी।
अच्छा, और दूसरी वजह क्या थी?
दूसरी और शायद ज़्यादा ज़रूरी बात, वो थी उनका अपना अनुभव। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा किया था, उस अनुभव ने उनके विचारों को बहुत गहराई से गढ़ा। लोगों के सामने उस वक्त मुश्किल चुनाव थे कि भाई, कब्जा करने वालों का साथ दें, उनका विरोध करें, या चुपचाप बैठे रहें।
हाँ, बहुत कठिन समय रहा होगा।
बिल्कुल। तो इन असल जिंदगी के अनुभवों ने उनकी सोच को पुख्ता किया कि हम असल में कितने आज़ाद हैं और अपने फैसलों के लिए कितने जिम्मेदार। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं थी, ये इतिहास की आंच में तपा हुआ फलसफा था।
समझ गए। तो अब आते हैं इस लेक्चर पर। अस्तित्ववाद एक मानवतावाद है, जैसा आपने बताया, ये कोई भारी भरकम किताब नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 1945 में पेरिस में दिए गए एक पब्लिक लेक्चर का लिखा हुआ रूप है, ट्रांसक्रिप्ट कह लीजिए, और इसका मकसद, जैसा मैंने कहा, दोहरा था। एक तो अस्तित्ववाद पर जो उंगलियां उठ रही थी उनका जवाब देना, और दूसरा इसके नूर विचारों को आसान और दिलचस्प तरीके से लोगों के सामने रखना।
और सुनने वाले कौन थे? मतलब क्या सिर्फ फिलॉसफी के स्टूडेंट्स?
नहीं, आम लोग थे। उनमें कम्युनिस्ट और कैथोलिक सोच वाले आलोचक भी शामिल थे। वो कह रहे थे कि भाई, सार्त्र का फलसफा निराशा फैलाता है, लोगों को निकम्मा बनाता है और सिर्फ अपने बारे में सोचने को कहता है, स्वार्थी बनाता है।
अच्छा, तो सार्त्र इन सब बातों का जवाब देना चाहते थे।
जी, तो सार्त्र इस लेक्चर में श्रोताओं को एक सफर पर ले जाते हैं जहां आज़ादी और जिम्मेदारी के मायने ही बदल जाते हैं। वो शुरुआत में मानते हैं कि हाँ, ये आलोचनाएं हो रही हैं, फिर एक एक करके उन्हें खारिज करते हैं और फिर वो अपना सबसे मशहूर और बुनियादी आइडिया सामने रखते हैं। अस्तित्व सार से पहले आता है, सुना होगा आपने, एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस।
हाँ, ये लाइन तो बहुत मशहूर है, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है?
इसे समझाने के लिए वो बड़ा सरल सा उदाहरण देते हैं, जैसे कागज काटने वाला चाकू। वो कहते हैं कि चाकू बनाने वाला जो कारीगर है, वो पहले सोचता है कि उसे कैसा चाकू चाहिए, उसका मकसद क्या होगा, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, यानी चाकू का सार, उसका कॉन्सेप्ट, उसका पर्पस, उसके बनने, एग्जिस्टेंस से पहले आता है।
ठीक है, ये तो समझ आता है, किसी भी बनाई हुई चीज के साथ ऐसा ही होता है।
सही का। लेकिन सार्त्र कहते हैं, इंसान के साथ ऐसा नहीं है। यहीं पर उनका सबसे क्रांतिकारी विचार आता है। वो कहते हैं कि अगर हम ये मान लें कि कोई ईश्वर नहीं है जिसने इंसान को किसी खास मकसद या डिजाइन के साथ बनाया है, तो फिर इंसान का कोई पहले से तय सार या मानव स्वभाव नहीं हो सकता, कोई फिक्स्ड ह्यूमन नेचर नहीं है।
मतलब
इंसान पहले दुनिया में आता है, वो बस होता है, मौजूद होता है, उसके बाद अपने चुनावों से, अपने कामों से वो खुद को बनाता है, खुद को परिभाषित करता है।
अरे वाह, मतलब कोई पहले से लिखी हुई किस्मत या तयशुदा पहचान नहीं है, हम एक कोरी स्लेट की तरह है और अपनी कहानी खुद लिखते हैं हर पल हर चुनाव से। ये तो बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल, सार्त्र कहते हैं व्यक्ति वही है जो वो खुद को बनाता है। ये है अस्तित्ववाद का पहला सिद्धांत। शुरुआत में इंसान कुछ भी नहीं होता, वो वही बनता है जो वो खुद को बनाता है। ये सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन इसके नतीजे बहुत गहरे हैं और कभी कभी परेशान करने वाले भी।
हाँ, क्योंकि अगर हम पूरी तरह से आजाद है अपना रास्ता चुनने के लिए, तो फिर इसकी पूरी जिम्मेदारी भी तो हमारी ही हुई। मतलब कोई बहाना नहीं कि किस्मत में यही लिखा था या हालात ऐसे थे।
एकदम सही, यहीं से निकलती है वो भावना जिसे सात्र वेदना, एंग्विश या अंगुआस कहते हैं। ये कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी वाली बात नहीं है, बल्कि एक गहरा एहसास है कि जब हम अपने लिए कोई रास्ता चुनते हैं, तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं चुन रहे होते, हम अनजाने में पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल कायम कर रहे होते हैं कि इंसान को कैसा होना चाहिए। हमारा हर छोटा बड़ा फैसला एक तरह से पूरी मानव जाति के लिए कानून बनाने जैसा है। इस जबरदस्त और गहरी जिम्मेदारी का एहसास ही वेदना है।
ये तो बहुत भारी जिम्मेदारी लगती है। मतलब मैं सुबह क्या नाश्ता करूं से लेकर करियर चुनने तक, हर फैसले में मैं सिर्फ अपनी नहीं बल्कि एक तरह से पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी कर रही हूं। ये सोचकर तो चिंता होना लाजमी है।
हाँ, और सार्त्र कहते हैं कि ये चिंता लाजमी ही नहीं, जरूरी भी है। ये हमारी आजादी का सबूत है। इसी से जुड़ा दूसरा नतीजा है परित्याग, फॉरलोरनेस या डेलेसमेंट। इसका मतलब है ये मानना कि हम बिल्कुल अकेले हैं अपने फैसले लेने में। अगर ईश्वर नहीं है, कोई पहले से तय नैतिक नियम नहीं है, तो हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। सार्त्रियां दोस्तोयेव्स्की को याद करते हैं, अगर ईश्वर नहीं होता तो सब कुछ जायज होता।
अस्तित्ववादी के लिए ये एक शुरुआती बिंदु है। कोई आसमान से उतरी गाइडबुक नहीं है जो बताए कि क्या सही है क्या गलत। हम परित्यक्त हैं, अकेले छोड़ दिए गए हैं।
तो फिर सही गलत का फैसला कैसे होगा? अगर कोई नियम ही नहीं है, मूल्य कहाँ से आएंगे?
यहीं पे सार्त्र का सबसे दिलचस्प जवाब आता है। वो एक उदाहरण देते हैं अपने एक छात्र का, जो युद्ध के समय बड़ी दुविधा में फंस गया था। उसे चुनना था, या तो वो फ्रांस में अपनी बीमार माँ के पास रुके जिसका वो इकलौता सहारा था, पिता ने दुश्मनों का साथ दिया था, बड़ा भाई लड़ाई में मारा गया था, माँ बस उसी के लिए जी रही थी।
हाँ, या फिर वो इंग्लैंड जाकर फ्री फ्रेंच फोर्सेस में शामिल हो और देश की आज़ादी के लिए लड़े, जो कि ज्यादा लोगों के काम आता, लेकिन इसका मतलब था माँ को अकेला छोड़ना।
बहुत ही मुश्किल चुनाव है। मतलब कोई भी नैतिक नियम यहाँ सीधे सीधे मदद नहीं कर सकता। माँ की सेवा करना भी सही है, देश के लिए लड़ना भी।
बिल्कुल, ना ईसाई नैतिकता अपने पड़ोसी से प्रेम करो कोई साफ जवाब देती है, ना कांट की नैतिकता किसी को साधन मत समझो, दोनों तरफ तर्क थे। तो छात्र सार्त्र के पास सलाह लेने आया। पता है सार्त्र ने क्या कहा?
क्या कहा?
उन्होंने कहा, तुम आजाद हो इसलिए चुनो, यानी आविष्कार करो।
आविष्कार करो मतलब
कोई पहले से तय सही रास्ता नहीं था, छात्र को खुद ही एक रास्ता चुनना था और उस पर पूरी तरह से अमल करके उसे सही बनाना था। नैतिकता चुनने के अमल में है, न कि किसी बने बनाए नियम में। हमें अपने मूल्य खुद आविष्कार करने पड़ते हैं। अपनी भावनाओं पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि भावना की ताकत तो काम करने के बाद ही पता चलती है।
अच्छा, तो ये मतलब है कि मूल्य कहीं लिखे हुए नहीं मिलते, हम उन्हें अपने चुनावों से बनाते हैं, अपने कामों से बनाते हैं। ये तो सचमुच हमें पूरी तरह जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन क्या इससे एक तरह की निराशा नहीं होती कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई मदद नहीं, कोई गारंटी नहीं?
सार्त्र तीसरे नतीजे को निराशा, डिस्पेयर या डेसिस्पोर कहते हैं, लेकिन इसका मतलब वो नहीं जो हम आमतौर पर समझते हैं, यानी नाउम्मीद या हार मान लेना। सार्त्र की निराशा का मतलब है सिर्फ उसी पर भरोसा करना जो हमारे बस में है, हमारी इच्छा शक्ति और हमारे काम करने की संभावनाओं पर। हमें बाहरी ताकतों, दूसरों की नेकी या किसी महान ऐतिहासिक नियति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि वो हमारे लक्ष्य पूरे कर देंगे। हमें कह सकते हैं आशा के बिना काम करना चाहिए।
आशा के बिना?
हाँ, मतलब झूठी उम्मीदें पाले बिना अपनी पूरी ताकत उसमें लगानी चाहिए जो हम कर सकते हैं, हमारे नियंत्रण में है, हवाई के लिए नहीं बनानी।
तो ये एक तरह से यथार्थवादी नजरिया है कि भाई ख्याली पुलाव मत पकाओ, जो कर सकते हो वो करो। लेकिन अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए बहाने बना लेते हैं ना, जैसे कह देते हैं अरे मैं तो बस ऐसा ही हूं, या मेरे पास कोई चारा नहीं था।
हाँ, और इसी को सार्त्र बुरी आस्था, बैड फेथ या मॉविस फॉ कहते हैं। ये है खुद को धोखा देना, ये नाटक करना कि हम किसी वस्तु की तरह हैं जिसकी किस्मत तय है, जबकि असल में हम आजाद हैं चुनने के लिए। जब हम कहते हैं अरे समाज में ऐसे ही चलता है, मैं क्या करूं, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो हम अपनी आजादी से भाग रहे होते हैं। सार्थ का पूरा लेक्चर इस बुरी आस्था के खिलाफ है और प्रामाणिक यानी सच्चे जीवन जीने का एक आह्वान है।
तो ये सारी बातें, आजादी, जिम्मेदारी, वेदना, परित्याग, निराशा, बुरी आस्था, ये सब मिलकर अस्तित्ववाद की तस्वीर बनाती हैं। लेकिन लेक्चर का टाइटल तो है अस्तित्ववाद एक मानवतावाद है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये दर्शन इंसानियत का जश्न मनाता है?
सार्त्र यहाँ मानवतावाद शब्द को थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो उस तरह के मानवतावाद को खारिज करते हैं जो सिर्फ इंसान की महान उपलब्धियों का गुणगान करता है कि देखो इंसान ने क्या क्या कर दिखाया।
अच्छा, तो फिर कैसा मानवतावाद?
उनका अस्तित्ववादी मानवतावाद दो बातों पर टिका है। पहली, इंसान हमेशा अपने से आगे निकलने की कोशिश में रहता है, वो खुद के लिए लक्ष्य बनाता है और उन्हें पाने की कोशिश करता है। इसे वो उत्कृष्टता कहते हैं, इसी खुद को पार करने की कोशिश में ही उसका वजूद है। और दूसरी बात, क्योंकि कोई पहले से तय मूल्य नहीं है, तो इंसान ही अपने चुनावों से मूल्य बनाता है। वो मानवता के लिए कानून बनाने वाला है, लॉ मेकर।
तो ये कोई नरम गरम मानवतावाद नहीं है जो कहे वाह इंसान तुम कितने महान हो, बल्कि ये कहता है देखो जब तक तुम कुछ करते नहीं तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कीमत तुम्हारे चुने हुए कामों में है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा भाग्य हमारे ही हाथ में है।
बिल्कुल, ये एक कठोर मानवतावाद है पर सशक्त बनाने वाला भी।
लेकिन क्या ये हमें बिल्कुल अकेला नहीं बना देता, सिर्फ अपने आप पर केंद्रित? आपने कहा था कि आलोचक यही कहते थे।
नहीं, यहीं पर सात्र अंतर्विशेषता, इंटरसब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि हम खुद को दूसरों के जरिए ही पहचानते हैं। हमें अपनी आजादी का एहसास भी तब होता है जब हम दूसरे को एक आजाद व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हमारी चेतना मौलिक रूप से दूसरे की पहचान से जुड़ी हुई है।
अच्छा,
हमारी आजादी दूसरों की आजादी से जुड़ी हुई है। इसलिए यह दर्शन पूरी तरह व्यक्तिवादी या अकेलापनवादी नहीं है जैसा कि कुछ आलोचक कहते थे। हम तब तक कुछ भी नहीं हो सकते जब तक कि दूसरे हमें उस रूप में मान्यता ना दें।
ये तो बहुत दिलचस्प बात है। चलिए अब कुछ उन यादगार लाइनों पर दोबारा नजर डालते हैं जो इस पूरी सोच का निचोड़ है। सबसे पहली और सबसे मशहूर, अस्तित्व सार से पहले आता है।
हाँ, इसका सीधा मतलब है हम बिना किसी ब्लूप्रिंट के पैदा होते हैं, पहले हम बस होते हैं, फिर अपने कामों से अपनी पहचान बनाते हैं। नो प्रीडिफाइंड नेचर।
जुड़ी दूसरी लाइन, व्यक्ति वही है जो वो खुद को बनाता है।
जी, ये पूरी तरह से आत्मनिर्माण और अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेने की बात है, कोई बहाना नहीं चलेगा।
और फिर वो चौंकाने वाली लाइन, मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है।
ये सुनने में कितना विरोधाभासी लगता है, आजादी और अभिशाप।
ये विरोधाभास ही इसकी खासियत है। मतलब हम चुन नहीं सकते कि हमें आजाद होना है या नहीं, हम पैदा ही आजादी की हालत में हुए हैं, इसमें फेंके गए हैं। और क्योंकि हम आजाद हैं, हम अपनी हर पसंद हर नापसंद के लिए जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते, इसीलिए ये आजादी एक अभिशाप या बोझ जैसी लगती है।
We can't escape it.
समझ गए। और आखिरी लाइन जो जिम्मेदारी पर और जोर देती है, अपने लिए चुनते हुए वह सभी मनुष्यों के लिए चुनता है।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हमारे निजी फैसलों का असर हमसे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। हम हर चुनाव से एक तरह की मानवता का मॉडल पेश कर रहे होते हैं।
तो ये सब गहरे विचार हैं। अब सवाल ये है कि आज की जिंदगी में हम इनका क्या करें? ये दशकों पुरानी फिलॉसफी आज हमारे किस काम आ सकती है?
मुझे लगता है सबसे बड़ी मदद ये बड़े फैसले लेने में करती है। करियर चुनना हो, कोई रिश्ता खत्म करना हो, या कहीं नई जगह बसना हो, हम अक्सर सही जवाब ढूंढते रहते हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
लगता है कोई एक परफेक्ट रास्ता होगा।
सार्त्र कहते हैं कि कोई बाहरी सही जवाब है ही नहीं, सही वो रास्ता है जिसे आप चुनते हैं और उस पर पूरी तरह से टिके रहते हैं, उसे अपना बनाते हैं। ये सोच हमें उस परफेक्ट फैसले की तलाश के बोझ से, उस पैरालिसिस से आज़ाद करती है। सवाल मुझे क्या करना चाहिए से बदलकर ये हो जाता है कि मैं खुद को क्या बनाना चाहती हूँ।
और ये चिंता और हिचकिचाहट से निपटने में भी मदद कर सकता है। आपने वेदना की बात की थी, हाँ, अगर हम उस वेदना या चिंता को डर की बजाय अपनी जबरदस्त आज़ादी और जिम्मेदारी का एहसास समझें, तो शायद हम बड़े फैसलों का भार बेहतर तरीके से उठा पाएं। ये हमें याद दिलाता है कि जिम्मेदारी महसूस करना इंसान होने का हिस्सा है। इसे स्वीकार करके हम आगे बढ़ सकते हैं बजाय इससे भागने के।
और काम की जगह पर या अपनी क्रिएटिविटी को लेकर, वहाँ भी बुरी आस्था बहुत दिखती है। लोग कह देते हैं मुझ में टैलेंट नहीं है या मैं लीडर नहीं बन सकता।
बिल्कुल, ये सोच इन झूठे खुद पर लगाए गए लेबलों को चुनौती देती है। ये कहती है कि आप अपने पुराने कामों या अपनी जॉब प्रोफाइल से बंधे नहीं हैं। आप वो हैं जो आप आज कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आप चुन रहे हैं, जो एक्शन आप ले रहे हैं। ये पहल करने को प्रोत्साहित करता है।
और समाज में हमारी भूमिका, आज जहाँ इतने अलग अलग नैतिक विचार हैं, इतनी उलझी हुई सामाजिक समस्याएं हैं,
वहाँ ये सोच हमें हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी याद दिलाती है। हम अपनी नैतिकता की जिम्मेदारी किसी धर्म, पार्टी या परंपरा पर नहीं डाल सकते। हम क्या खरीदते हैं, किसे वोट देते हैं, दूसरों से कैसा बर्ताव करते हैं, ये सब मिलकर उस दुनिया को बना रहा है जिसमें हम रहते हैं। ये हमें ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने को कहता है। हर एक्शन मायने रखता है,
और खासकर उन लोगों के लिए जो शायद किसी पारंपरिक धर्म को नहीं मानते। ये जिंदगी में मतलब ढूंढने का एक रास्ता दिखाता है ना?
हाँ, बहुत अहम बात है ये। मतलब कहीं बाहर से तय होकर नहीं मिलेगा, उसे बनाना पड़ेगा। अपने रिश्तों, अपने कामों, अपने जुनून, अपने चुने हुए मूल्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर। मीनिंग इज क्रिएटेड, नॉट फाउंड।
तो कुल मिलाकर अस्तित्ववाद एक मानवतावाद है से सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि हम अपनी जिंदगी और अपने मूल्यों के अकेले लेखक हैं, अकेले मालिक हैं।
जी, ये हमें बाहरी सहारों, भगवान, किस्मत, समाज, फिक्स्ड नेचर की बैसाखियों से मुक्त करता है और हमें हमारी आज़ादी और हमारी जिम्मेदारी के साथ अकेला खड़ा कर देता है। ये थोड़ा डरा सकता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी है।
हाँ, ये सुनने वालों की सोच बदल सकता है कि इंसान होने का मतलब क्या है। हम हालात के मारे नहीं, बल्कि अपनी कहानी के रचनाकार हैं। तीन खास बातें मुझे लगता है याद रखनी चाहिए। पहली, हम बुनियादी तौर पर आज़ाद हैं। हमारी पहचान पहले से तय नहीं, हम अपने कामों से बनते हैं।
दूसरी, हम पूरी तरह जिम्मेदार हैं। हमारा हर चुनाव हमें और दुनिया को आकार देता है।
और तीसरी, जिंदगी का मतलब ढूंढा नहीं जाता, बनाया जाता है। हमें सक्रिय होकर अपने चुने हुए लक्ष्यों के प्रति समर्पित होकर जीना होगा।
संक्षेप में कहें तो ये लेक्चर आलस, भाग्यवादिता और खुद को धोखा देने की प्रवृत्ति का एक जबरदस्त तोड़ है, एक टाइमलेस एंटीडोट। ये हमें एक ऐसी दुनिया में सच्चाई, हिम्मत और जिम्मेदारी से जीने का न्योता देता है जो हमें कोई आसान जवाब नहीं देती, लेकिन सबसे बड़ा इनाम देती है, खुद को बनाने की आज़ादी। और शायद आज के दौर में, जहां बाहर से मान्यता पाने और दूसरों जैसा बनने का दबाव इतना ज़्यादा है, ये सवाल और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम खुद को आविष्कार करने की इस आज़ादी को कितना बचा पाते हैं। इस पर सोचना चाहिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।